الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن پاک کی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 105 نمبر آیت کی تلاوت ہوگی, اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے ملنے والا انشاءاللہ پیغام. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو, اے مسلمانو, نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرق کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے, حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ. اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیا ریزن تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے کہا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا بتائی؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین. اے مسلمانوں, نہ تو اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک. کیا نہیں چاہتے؟ آگے بتایا قرآن نے, اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم, کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. کتنا حسد ہے انہیں, ان کو کتنا پرابلم ہے ان مشرکین کو, ان یہودیوں کو, اس زمانے کے لوگوں کو, اور آج بھی ہے کہ مسلمانوں پر بھلائی نہ اتر جائے, مسلمانوں سے ان کا رب راضی نہ ہو جائے, ان پہ برکتوں کا نزول نہ ہو جائے. اب طریقہ کیا انہوں نے اپنایا کہ وہ خود بھی گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے مسلمان بھی معاذ اللہ ان گستاخانہ جملوں کو دہرانا شروع کر دیں, مگر یہ بدبخت جانتے نہیں. اللہ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو انعام کیا دیا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. جنہیں بچانا ہوتا ہے, جنہیں نوازنا ہوتا ہے, جنہیں عروج عطا کرنا ہوتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیوں؟ کہ ہمیں نسبت ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس نسبت کی برکت سے, اس غلامی کی برکت سے اللہ مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. کیا خوبصورت شاعر نے بات کہی نا, ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم, صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا, بے سبب اس کی عطائیں بے شمار, بے غرض اس کے کرم بے انتہا, اپنے بندوں کو خدائے پاک نے اس کے صدقے میں دیا جو کچھ دیا. یعنی نبی پاک کی غلامی ملی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ملا, تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. اب یاد رکھیے, غیر مسلم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں نا, دشمن کو بعض اوقات ہمارا وہ پرابلم پتہ ہوتا ہے جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے. उन्हें ये पता है कि अगर इस कौम को बर्बाद करना, ये अभी से नहीं सदियों से पता है उनको कि अगर मुसलमानों को तबाह हो बर्बाद करना है, मुसलमानों को अपने रब से दूर करना है, मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करना है, तो एक ही तरीका है कि इनके दिल से मोहब्बत रसूल निकाल दो, इनके दिल से नबी पाक से मोहब्बत निकाल दो। क्योंकि ये अपने नबी से जब तक मोहब्बत करेंगे, ये कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो जाए, अगर कभी ऐसा मौका आएगा तो ये अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, अपने आका पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और आज भी कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो मुसलमान, एक वक्त का नमाजी ना हो, बेशक बुरे कामों में पड़ा हुआ हो, लेकिन नबी पाक पर बात आ जाए तो वो आज भी गुनाहगार अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। और यही बात उन बदबख्तों को पता है कि अगर इनका ईमान कमज़ोर करना है तो देर इज़ ओनली वन वे। और ये बात शायर मशरक डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कह दी थी कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, वो फाका कश कि मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। क्योंकि मुसलमान गरीब हो, फकीर हो, परेशान हो, लेकिन जब नबी पाक की बात आ जाए तो ना वो गुर्बत से डरता है, ना फाके से डरता है, वो अपने नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हाँ, एक शायर ने लिखा ना, बता दो गुस्ताखान नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। अब कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अब कितने ही खताकार क्यों ना हो, मगर आज भी नबी पाक पर अपना सब कुछ कुर्बान है। लेकिन देखो, इसको कम मत होने देना, ये प्लान है, ये साजिशें हैं कि किसी तरह इनको इनके नबी से दूर कर दो। और उसके लिए प्लानिंग हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही, मैं आगे बयान करूंगा कि बाकायदा। अब देखिए ना, कुरान में रब ने फरमाया ये चाहते हैं मुसलमानों पर फजल ना हो, इसलिए गुस्ताखाना जुमले कहते हैं। और आज भी कभी खाके बनाते हैं, हमें टेस्ट किया जाता है, हैं, कभी माद अल्लाह नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाती है। और आप कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार अब ठीक है, ये तो उनका अमल है तो हमारा क्या मसला, उनके दिल पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर अपने अपने ईमान को चेक करवाइए, क्यों कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हाँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर जुमे को हम खुतबा सुनते हैं और आपको सब ने, मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ आपको सबको याद आ जाएगा। और वो जुमला क्या मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जहाँ भी आप जुमा पढ़ते होंगे, अला ला ईमान लिमल्ला महब्बत अला, याद आ रहा है कुछ, तीन बार उमूमन इमाम साहब कहते हैं, अला ला ईमान लिमल्ला महब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला महब्बत अला। क्या माना है इसके, वॉट इज़ द मीनिंग? माना यह है, सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी से मोहब्बत नहीं। ये एक्चुअली ईमान की जान है मोहब्बत रसूल। हाँ, सारी नमाजें, रोज़े, इबादत सब एक तरफ, अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर कुछ नहीं। और वो उसी को टारगेट किए हुए बैठे हैं। आज भी प्लान है, आज भी प्लांटेड लोग आते हैं जो किसी तरीके से कोई ऐसा प्लान करते हैं कि यार ये मुसलमानों के दिल से इनके नबी की मोहब्बत निकल जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा पहले उनकी बात कर लेते हैं, उस ज़माने के जो लोग थे। देखिए, उन लोगों को नबियों का फैज़ान नहीं मिला है। अब क्या हुआ कि यहूदी खुद गुस्ताख थे, हालांकि तौरात मिली उन्हें उनके, लेकिन ये उसके फैज़ान से महरूम रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीम व शान नबी भेजे गए मगर फैज़ान नबूवत से महरूम रहे। हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा तक हज़ारों पैगम्बर आए मगर उन्होंने गुस्ताखियाँ कं, नबियों का फैज़ान हासिल ना किया। आखिरकार क्या हुआ, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वदुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और उन पर ज़िल्लत और ग़ुर्बत मुसल्लत कर दी गई और वो खुदा के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो गए। मतलब क्या हुआ, गुस्ताखियों के सबब, नबियों की बारगाह में बेअदबियों के सबब, सरकशियों के सबब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने उन पर ग़ज़ब नाजिल किया और वो रहमत व बरकत से महरूम हो गए। अब ये क्या करते हैं कि इन्होंने देखा कि हम तो खाई में गिर गए हैं, हैं, हमसे तो अल्लाह नाराज़ है, हमने तो नबियों की गुस्ताखी की, अब मुसलमान भी अपने नबी की गुस्ताखी करें, अब मुसलमान भी बेअदबी करें। अब क्या होता है कि अब सुनिएगा, कभी खाके बनाते हैं और कभी मुसलमानों के दरमियान अपने कारिंदे शामिल करते हैं। वो कभी कभी मजहबी हुलिया अपनाकर आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर आकर बैठते हैं और फिर बेबाकियां कर रहे हैं, गुस्ताखियां करते हैं। और लोग कहते हैं तो इजहार राय है जनाब, आज़ादी इजहार राय है, माद अल्लाह। वो चाहते क्या हैं कि किसी तरह हमारी ज़बान पर बेअदबी है। देखें, यहूदियों ने उस ज़माने में सहाबा को नहीं कहता आप गुस्ताखी करें, वो गुस्ताखाना जुमले कहना शुरू कर दिया उन्होंने ताकि उनकी ज़बान से भी वो अदा हो जाएँ। आज भी यही हो रहा है, हमें कोई कहता नहीं आप ये कहो, मगर वो टीवी पे आके सहाबा के खिलाफ बात करेगा, हैं कोई नबियों के बारे में बात कर देंगे, कोई माद अल्लाह प्यारे आका के अहले बैत के बारे में बेअदबी वाली बात, ताकि मुसलमान भी बेअदबी के जुमले सीख जाएं, मुसलमान भी गुस्ताखियां करने माद अल्लाह लग जाएं, ताकि इनका ईमान कमज़ोर हो जाए, ताकि इनसे मोहब्बत रसूल छीन ली जाए। ये वो प्लान है कि किसी तरह इनके दिल से मोहब्बत रसूल को निकाला जाए। मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी दीवार हो, आप उसको धक्का दें वो नहीं गिर रही, अब क्या करेंगे यार, इसके नीचे से मिट्टी निकालो, इसकी मिट्टी निकाल दोगे ना ये कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारे ईमान की दीवार है, और अब उसके नीचे से डायरेक्ट कोई नहीं कहता माद अल्लाह नबी पाक के बारे में, वो सहाबा के बारे में बात करेंगे, वो औलिया के बारे में बात करेंगे, वो अहले बैत के बारे में बात करेंगे, आपको कहेंगे दीनदार लोगों से उलमा के पास जाने की क्या ज़रूरत है, ताकि पहले आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी निकलती जाए, हैं पहले ही उलमा से दूर करो, फिर औलिया से दूर करो, फिर सहाबा से करो, फिर अहले बैत से करो, और आखिरी वक्त इतनी दीवार कमज़ोर हो जाए कि फिर दीन से ही दूर कर दो। ये समझिए बात, मुझे बताएं माशाल्लाह आप जो आते हैं कुछ सीख के जाते हैं ना, अगर आप ये आना ही छोड़ दें आलिम दीन के पास या मुबल्लगीन के पास जुम्मे का खुतबा सुनना ही छोड़ दें, तो जो जुम्मे के दिन ये जहाँ जहाँ आप सीखते हैं, ये किससे मिला मुझे और आपको आज तक जो दीन मिला है, मैंने और आपने आज तक जो सुन्नतें सीखी हैं, जो इल्म दीन सीखा है, वो किससे सीखा, वो उलमा से सीखा, उनकी किताबों से सीखा। हम तो सहाबा से डायरेक्ट नहीं मिले ना, हम तो नबी पाक से डायरेक्ट नहीं मिले, उलमा वारिसुल अंबिया हैं, इसीलिए वारिसुल अंबिया कहा जाता है कि वो तबलीग का काम जो नबी पाक और सहाबा ने किया अब वो कर रहे हैं। लेकिन प्लान देखें, कहते हैं उलमा की ज़रूरत ही नहीं है, औलिया ने तो किया ही कुछ नहीं है, सहाबा तो माद अल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है, यानी किस तरीके से दीन से दूर करना है। अगर ये भोले भाले मुसलमान ये नहीं समझेंगे तो ये उस ज़माने से साजिश हो रही है। कुरान सुनाया मैंने आपको कि यहूदी सहाबा के सामने वो गुस्ताखाना जुमले कहते थे, और वो तो कुरान में रब ने फरमा दिया ना कि ऐसा जुमला न किसी ने कहना है ना उसको दोबारा रिपीट करना है। लेकिन ये मैसेज है हम सब के लिए। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला का वाक़िया सुनिए, सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने रिवायत की हैं। अब उनकी ऐसी इश्क वाली आदत थी, और उनको पता था कि ईमान मजबूत कैसे करना है। होता क्या था कि जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, जब किसी देहाती को देखते थे ना जो दूर से आया है, तो उसको कहते आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, तो कहता मैंने ज़ियारत नहीं की। बोले बैठो मैं आपको नबी पाक का हुलिया बताता हूँ, प्यारे आका की बातें बताता हूँ, नबी पाक के औसाफ बताता हूँ। अब सवाल है कि यार एक देहाती है दूर से आए, पहले नमाज सिखाएं, पहले कुरान सिखाएं, पहले सुन्नतें सिखाएं, नहीं, वो जानते थे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर कौन सा डालना है, वो इश्क रसूल का सॉफ्टवेयर डालना है। ये नबी पाक से मोहब्बत कर लेगा ना, फिर नमाजी भी बन जाएगा, फिर कुरान भी पढ़ेगा, फिर ये सुन्नतों पर भी अमल करेगा, और जनाब नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, सब कुछ है, और अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अब ये कौन कर रहा है, ये सहाबी रसूल कर रहे हैं। वो जानते थे कि नबी पाक से जब दिली रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना तो ईमान पुख्ता हो जाएगा, ईमान जितना पुख्ता होगा नेकियों में दिल भी लगता है, आदमी जन्नत के रास्ते पर भी चल जाता है। तो मोहब्बत रसूल हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को नबी पाक की बातें बताएं, उनके औसाफ बताएं, उनके मौजजात बताएं, उनकी खूबसूरती बताएं, उनके कमालात बताएं, हाँ उनका दिल नबी पाक से मोहब्बत से भर दो, आप आशिक रसूल बन गए ना, फिर इंशाल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। तो ये है बेसिक चीज जो हमें समझनी है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इश्क रसूल बढ़ाएं कैसे, मोहब्बत रसूल हम कैसे इजाफा करें, इसका भी उलमा ने तरीका बताया कि बड़ी प्यारी बात बताई कि सबसे पहले तो कुरान में जो रब ने नबी पाक की शान बयान की है ना, कुरान ने जिस तरह अपने हबीब का जिक्र किया, अल्लाह ने जिस तरह अपने हबीब का जिक्र किया, जिस तरह नबी पाक की शान, आप देखें मैं कोशिश कर रहे हैं हम नबी पाक के बहुत सारे औसाफ कुरान से समझते हैं, तो कुरान से जब आप नबी पाक की शान पढ़ते हैं ना तो इज्जत ताज़ीम मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है। तो एक तरीका तो ये है, तो उसको पढ़ें, अपने बच्चों को सुनाएं, उसकी किताबें माशाल्लाह मिल जाती हैं, आप हमें कहें मकतबतुल मदीना पर मौजूद होती हैं, फिर दुरूद पाक की कसरत, कसरत दुरूद। याद रखिए जिससे मोहब्बत होती है ना बंदा उसका जिक्र ज़्यादा करता है। अब मैं कहूँ जनाब नबी पाक से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन में नाम कितनी बार लिया आपने, मैं आपको सच बताऊँ कभी किसी, आपके साथ भी होता होगा कभी किसी दोस्त के साथ बैठे ना, थोड़ी देर में पता चल जाता है इसको अपने किससे ज़्यादा मोहब्बत है। जिसको अपने बच्चे से मोहब्बत होगी ना, हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे का किसी ना किसी बहाने से जिक्र करता रहेगा। किसी दोस्त से बहुत मोहब्बत होगी, थोड़ी देर बाद उस दोस्त का बात करेगा। किसी को अपने वालिद से मोहब्बत है, अपनी वालिद का जिक्र करेगा। यानी बंदे के पास बैठकर पता चल जाता है कि ये किससे प्यार करता है। सच बताओ क्या आशिक रसूल के पास बैठकर पता नहीं चलना चाहिए नबी पाक से कितना प्यार करता है यार। ये जब देखो प्यारे आका की बातें करता है, जब देखो उनका नाम लेता है, जब देखो उनका जिक्र करता है, उन पर दुरूद पड़ता है, ये होना चाहिए। जिक्र रसूल से जबान तर रखिए, ये आपके इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा। फिर उलमा फरमाते हैं कि सीरत रसूल पढ़ें। बहुत बड़ा मसला ये कि हमने ना जाने किस किस की जो है ना बायोग्राफी और किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नबी पाक की सीरत को नहीं पढ़ा। यार जिस नबी का कलमा पढ़ा है हमें पता ही नहीं है कि उनकी मक्की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी मदनी ज़िंदगी कैसी थी। वल्लाही आप तवज्जो के साथ एक बार प्यारे आका की पूरी लाइफ को पढ़ लें, सीरत रसूल को पढ़ लें, आप दीवाने हो जाएंगे, आपको आपके मज़े को मज़ा आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत सारी किताबें हज़ारों बल्कि सच्ची बात ये सदियां हो गई नबी पाक की सीरत लिखी जा रही है मगर बात पूरी नहीं हो रही है। हाँ ये भी कमाल है, प्यारे आका के औसाफ़ का एक कमाल ये है कि उनकी तारीफ में उनकी शान में 1400 साल से लिखा जा रहा है मगर बात पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? शायर कहते हैं ना, जिंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, एक बाब एक चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। तो अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने हबीब का। प्लीज़ सीरत पढ़िए। तो मैं एक किताब सजेस्ट करता हूँ, शायद मैंने कई बार उस किताब को पढ़ा है और कई बार तो रोते रोते पढ़ा है, यानी वो कमाल किताब लिखी है मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने। और आप इस किताब को पढ़ लें, बिल्कुल चैप्टर वाइज उन्होंने इसको बनाया है कि प्यारे आका की विलादत से पहले के वाक़यात क्या थे, विलादत के वक्त के वाक़यात क्या थे, बचपन में लाइफ मुबारक ज़िंदगी मुबारक कैसी थी, फिर इब्तदाए इस्लाम के वाक़यात क्या थे, फिर हिजरत मदीना का वाक़या उसमें पढ़ें, मदीने पहुँच कर फिर पहली हिजरी में क्या हुआ, फिर जंगे बदर कैसे हुई, गजवाए अहद कैसे हुई, सुलह हुदैबिया कैसे हुआ, उसके बाद फतेह मक्का कैसे हुआ। अल्लाह अकबर, आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुंच गए। हाँ, रोज के कुछ सफात पढ़ें बावजू होकर, अल्लाह अकबर। अपने नबी की बातें नहीं पढ़ूंगा तो मैं किसकी बातें पढ़ूंगा? और आप ये बातें फिर अपने बच्चों को बताएं। फिर उसमें नबी पाक के मौजजात भी हैं, नबी पाक का हुसन भी है, प्यारे आका के आज़ा के कमालात हैं, सुबहान अल्लाह। आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुंच गए। थोड़ा वक्त निकालें। हाँ, जिसका कलमा पड़ा है, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, जिनके सदके दीन मिला है उनके बारे में तो जानो ना यार, पता ही नहीं हमें उनके बारे में। यकीन करें मैं 4-6 सवाल करूं उसके बाद जवाब नहीं होगा किसी के पास। और जनाब अपने क्रिकेटरों के बारे में तो जनाब पता नहीं, फुटबॉलर के बारे में, दुनिया भर के लोगों के बारे में मालूम है। हमारी नबी पाक से मोहब्बत की कमी की वजह भी ये है, हम उनकी सीरत नहीं पढ़ते, हमारा कनेक्शन कमज़ोर होता जा रहा है। ना करें ऐसा। मेरा सब कुछ मेरे आका है ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। अल्लाह करे ऐसे बन जाए। अब कुरान पाक की आयत का अगला हिस्सा, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास फरमा लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अब पिछली बात तो हमने समझ ली कि यहूदी और ये ईसाई जो थे या उस ज़माने के मुशरिकीन थे, और अब भी जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं वो मुसलमानों के हसद में मुबतला हैं, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम जिसे चाहे अपने फजल के साथ ख़ास फरमा लेता है। अच्छा, ये जो फजल के साथ ख़ास फरमाना ना, इस पर बड़ी ख़ास हदीस है। मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में पहली बार इस हदीस को आज पढ़ा है, आप सुने मज़ा आ जाएगा। एक हदीस पाक है, फजल खुदाबंदी मुसलमानों पर कैसा है, नबी पाक के उम्मतियों पर कैसा है, प्यारे आका ने किस तरह बयान फरमाया, बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह तआला से रवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी और यहूदो नसारा की मिसाल यूँ है कि गोया एक शख्स है जिसने कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा और कहा, कौन है जो फजर से लेकर निसफुन नहार यानी जोहर तक काम करेगा, फजर से लेकर जोहर तक काम करेगा, मैं उसे एक के रात उजरत में दूंगा। और ये नबी पाक ने फरमाया, ये मिसाल यहूदियों की तरह है, यहूदियों की है कि फजर से लेकर जोहर टाइम बहुत होता है, बहुत काम किया, एक के रात मिला। फिर वो शख्स ऐलान करता है, कौन है जो निसफुन नहार यानी जोहर से लेकर असर तक काम करेगा, उसको भी एक के रात दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नसारा ईसाइयों की मिसाल है। फिर उसने आखिर में ऐलान किया कौन है जो असर से मगरिब काम करेगा और दो किरात दूंगा। असर से मगरिब टाइम कितना? सबसे थोड़ा। और अजर कितना? डबल। फरमा ये मिसाल मुसलमानों की है, यानी पिछली कौमों ने बड़ी इबादतें की, जो इबादत गुजार थे ना वो जंगलों में रहते थे, बहुत मेहनत की, उम्रें भी लंबी लंबी, 300-300 साल, 400-400 साल इबादत। मुसलमानों की उम्र भी थोड़ी, जंगल में नहीं जाना है, जंगल में जाकर रियाजत में भूखे प्यासे रह के इबादत नहीं करनी है। हमारी मस्जिद में AC चल रहा है, पंखों के नीचे बैठे हैं, अल्लाह फिर भी अजर अता फरमा रहा है। उम्र भी थोड़ी, काम भी थोड़ा, अजर भी ज्यादा, क्यों? सुभान अल्लाह, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये सदका है जनाबे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कि हमें एक नेकी करें तो 10 नेकियों का सवाब, सारी जिंदगी भी कोई गुनाह करे एक बार सच्ची तौबा करे अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता। ये सदका है जनाबे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ने फरमाया जब यूं हुआ कि इस उम्मत ने काम थोड़े किए मगर अजर दुगना मिल गया, डबल मिल गया, तो यहूद व नसारा गुस्से में आ गए, बोले हमने काम ज्यादा किया, हमें अजर कम दिया जा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या मैंने तुम्हारे हक से कुछ कम किया है? तुम्हें तो बुरा मिल गया ना। हाँ, तो फिर अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह पाक का फजल है, रब करीम जितना चाहता है फजल अता फरमाता है। उन लोगों का तो पैसे कम नहीं हुए, जो उनसे बात हुई थी वो तो दे दिया ना। अब अल्लाह की मर्जी, एक ऐसी उम्मत आई क्योंकि वो हबीब पाक की उम्मत थी, जो काम थोड़ा करती है अल्लाह अजर ज्यादा अता फरमाता है। वल्लाहु दुल फजल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम पर मेहरबानी की गई है कि हमें थोड़े थोड़े अमल पर ज्यादा अजर, लेकिन इसकी वजह से दीगर अकवाम, दीगर मजाहिब के लोग हमसे हसद करते हैं और फिर उसी वजह से वो प्लान करते हैं। तो यहां ये बात हमें समझनी है कि हमें जो है वो थोड़ी से अमल पर जब अजर ज्यादा दिया जा रहा है तो हमें अल्लाह की रहमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए और फिर वो आमाल भी करने चाहिए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अब आखिरी बात, हसद जो, इसके बारे में हमने कुरान से भी सुना, ये यहूद वाली बीमारी है, ये पुरानी बीमारी है और बदकिस्मती से आज मुसलमानों में भी हसद आ रहा है। खुदा के वास्ते अपने आप को हसद से बचाएं। हसद इतनी बुरी बीमारी है कि नबी पाक फरमाते हैं हसद ईमान मूंड देने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे एलवा जो है वो शहद को बर्बाद कर देता है। अब लोग हसद पाल कर बैठे हैं, हसद करने वाले का ही बेड़ा गर्क होता है। एक वाक्या सुनिए जिससे आपको मजीद बात समझ आ जाएगी। एक शख्स था, बादशाह की बारगाह में था। सबक आमोस के वाक्या किताबों में लिखा है कि वो बादशाह के पास रहता था और उस बादशाह ने उस अपने बंदे को, अपने दरबारी को बड़ा बड़ा रुतबा दिया हुआ था। उसकी बातें बड़ी अच्छी होती थी। वो एक जुमला बार बार कहा करता था, एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो और बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, क्योंकि बुरे शख्स के लिए तो उसकी बुराई काफ़ी है। हम क्या करते हैं यार, इसने बुरा किया मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ दें, उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। आप अच्छे बंदे कर, अच्छा काम करने वाले, एहसान करने वाले को एहसान से जवाब दें, ठीक है, नेकी का जवाब नेकी से दें। कोई बुराई कर रहा है आप बुराई ना करें, छोड़ दें उसकी बुराई के हवाले, उसकी बुराई काफ़ी है। वो इसका एक जुमला बड़ा मशहूर था, बादशाह को बड़ा पसंद था। अब इसके दीगर वजीरों को हसद हो गया कि यार ये बंदा हर वक्त बादशाह के करीब है, प्लान किया कि किसी तरह बादशाह के कान भरते हैं और उसको मरवा देते हैं। बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, ये जो आप जिस दरबारी के बड़े गुण गाते हैं ना, बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छी बातें करता है, ये आपके बारे में पीछे बुरी बातें करता है? कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा बादशाह सलामत, ये तो कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है। कहा अच्छा, मेरे बारे में ऐसा कहता है? कहाँ, कल देख लीजिएगा, कल आएगा तो अपने मुँह पर हाथ रख के नाक बंद करके आपसे बात करेगा। कहा ठीक है, आने दो कल। अब उन दरबारियों ने क्या किया, उस बंदे की घर पर दावत की और उसको कच्चा लहसुन प्याज और सारी चीज़ें खिला दी। जब सुबह दरबार में जाने का टाइम हुआ, कहता यार मुंह से बदबू आ रही, बादशाह को कैसा लगेगा? वो अपने मुंह पे हाथ रख के गया तो बादशाह समझ गया कि ये तो वही बात है, हासिद यही करते हैं ना, चुगलखोर, कान भरते हैं। उल्टा बादशाह ने कहा ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे बारे में ये सोच रहा है कि मेरे मुँह से स्मेल आती है। एक खत लिखा बादशाह ने एक सिपाही के नाम कि जो ये खत लेकर आ रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके इसकी खाल के अंदर भूसा भरकर इसकी लाश मुझे भेजना। बड़ा गुस्सा बादशाह को, खत पकड़ा दिया उसको, जाओ जाके उस वजीर को देना, उस सिपाही को देना, पढ़ना नहीं। और वो जो हसद करने वाला था वो सारा माजरा देख रहा है कि यार मैं तो समझा बादशाह सलामत आज इसको मरवा देगा, बादशाह ने तो तोहफा, क्योंकि बादशाह का ये अंदाज़ होता था कि वज़ीर के पास भेजता था या सिपाही के पास भेजता था कि इसको इतने पैसे इनाम में दे दो, तो वो तो समझा कि उसको इनाम दे दिया बादशाह ने। तो जैसे ही वो बंदा बाहर निकला तो वज़ीर ने कहा ये पर्चा मुझे दे दो, मैं पहुँचा देता हूँ सिपाही को। ठीक है आप पहुँचा दें। उस बंदे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उसने वो पर्चा उसको पकड़ा दिया। अब जो हासिद था, हसद करने वाला बंदा था वजीर, वो पहुंच गया उस सिपाही के पास और जाके खत पकड़ाया। जैसे ही खत खोला तो उसने तो तलवार निकाली का तुम्हारी तो गर्दन उड़ाने का हुक्म है। कहने नहीं मेरा खत नहीं है ये, खत तो उसको मिला था। कहने बादशाह ने ये लिखा है, जो खत लेकर आया उसको मारना है। उसका गर्दन भी उड़ाई, उसकी लाश में भूसा भर गया। अगले दिन सुबह हुई तो वो बंदा फिर पहुंच गया बादशाह की बारगाह में, कहता है या बादशाह सलामत, एहसान करने वाले का बदला एहसान से दीजिए और बुराई करने वाले को उसकी बुराई पर छोड़ दीजिए, बुराई काफ़ी है उसके लिए। बादशाह कहता है तुम जिंदा कैसे हो? कहा क्यों क्या हो गया? कहा कल तुम आए थे, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया था। कहा वो पर्चा तो मैंने फला बंदे को पकड़ा दिया। फला बंदे को पकड़ा, वो तुम्हारे बारे में वही तो कहता था। कहा बादशाह सलामत मैं तो आपका अदब कर रहा था, मेरे मुंह से कल स्मेल आ रही थी, मैंने लहसुन खाया हुआ था, इसलिए मुंह पर हाथ रखा कि आपको तकलीफ ना हो। तो बादशाह कहता है जो तुम कहते थे वो सही था कि एहसान का बदला एहसान से दे दो, बुराई करने वाले के लिए उसकी बुराई काफ़ी है। ये वाकया है, मगर यकीन करें जो आज अगर हम आज के सिनेरियो में देखें ना, जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है ना, उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, वो एक्चुअली अपना बिगाड़ रहा होता है, वो अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। हदीसे पाक में आता है हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हदीस के अल्फाज सुने, इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। आका फरमाते हसद से बचो, हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। दुनियावी मिसाल देता हूं, सारा दिन काम करें, जॉब करें, मेहनत करें, मजदूरी करें और आखिर में घर जाकर सारे दिन की कमाई को रखें और आग लगा दें, क्या कहेंगे? अकलमंद कहेंगे उस बंदे को, यार पूरे दिन की कमाई को आग लगा दी, कमाया क्यों था? और आज इतना हसद आम हो गया, भाई को भाई से हसद, बहन को बहन से हसद, दोस्त को दोस्त से हसद, क्यों हम हसद करते क्यों हैं? याद रखें अल्लाह पाक की मर्जी, वो जिसे जो चाहे अता फरमाए, वो खालिक है, वो मालिक है। हम अल्लाह की तकसीम पर कैसे एतराज़ कर सकते हैं? इसको गाड़ी क्यों मिल गई, इसको बंगला क्यों मिल गया, ये तरक्की क्यों कर गया, मैं पीछे क्यों? यही तो हसद है ना। एक्चुअली हसद ये है कि जब अगला तरक्की करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अल्लाह अता फरमा रहा है, हम अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहे हैं, ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम। अच्छा एक और अजीब बात, जिससे हसद है ना उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते हम। ऐसा थोड़ी कि मैं हसद करूंगा तो नीचे हो जाएगा। अल्लाह ने इज्जत रखी है सारे, आप पाकिस्तान उससे हसद करे ना, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। हाँ व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। हम अपना ही नुकसान, एक तो नेकियां बर्बाद कर रहे हैं, उल्टा हसद करने वाले का एक और प्रॉब्लम क्या, उसको नींद नहीं आती, उसको टेंशन बड़ी रहती है, वो बेसुकून हो जाता है क्योंकि वो जल रहा है ना, वो आग में जल रहा है, हसद हो रहा है, जेलसी हो रही है। हमें आकर कुछ लोग कहते हैं कभी कभी नींद नहीं आती, दिमाग बहुत सोच रहा होता है, तो चेक करें किसी का हसद तो नहीं पाल लिया। अच्छा हसद जो है ना, हमेशा याद रखिए किसी जानने वाले से ही होता है। हाँ मुझे कराची में रहते हुए नाइजीरिया के किसी बंदे से हसद नहीं होगा, जानते ही नहीं तो क्या हसद होगा, किसी रिश्तेदार से होगा, किसी दोस्त से होगा, हाँ किसी कारोबार, हम जैसे कारोबार करने वाले से होगा, हम जैसी फील्ड के लोगों के साथ होगा। और ये सोचना छोड़ दें कि मुझे हसद नहीं हो सकता, हसद तो नबी के बेटे को करवा दिया था, काबिल और हाबिल में क्या प्रॉब्लम था? तो हमेशा याद रखें ये हसद प्रूफ कोई नहीं होता, अपने आप को चेक करते रहना होता है कि यार कोई है कि जिसकी तरक्की में मुझे प्रॉब्लम होती है, किसी की तारीफ करें तो मुझे तकलीफ होती है, अगर हो रही है तो तौबा करें, हसद को निकालें अपने अंदर से। मैं हसद करके सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मैं अपना बिगाड़ रहा हूं, मेरी नेकियां बर्बाद, मेरी बेसुकूनी, मैं जहन्नम की आग तैयार कर रहा हूं। नहीं, अपने दिल साफ करें यार, खुश होना सीखें, लोगों की तरक्की में खुश होना सीखें। हाँ ये जुमला सीख जाओ कि सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। कोई आकर बताए ना यार उसने नया बंगला बना लिया, अल्लाह और बरकत दे। अच्छा होता यही है, उस लोगों के सामने ही कह रहे थे अरे माशाल्लाह अल्लाह उसको बरकत दे, दिल में तकलीफ हो रही है, दो नंबर के पैसे से बनाया होगा भाई। हाँ फलाने नई गाड़ी ले लिए, हाँ हाँ माशाल्लाह मिठाई कब खिलाओगे? अच्छा उसके सामने बड़े अच्छे बन रहे हैं, बाहर निकल के कहते सूद के पैसे से ली होगी। अच्छा अगर उसने गलत किया है तो तुमको ऑडिटर किसने बनाया वो जाने, उसका रब जाने ना, उसका बंगला गलत, उसका कारोबार गलत, वो आपको किसने कहा चेक करने को, वो अल्लाह और जाने वो जाने। हम तरक्की में खुश नहीं क्यों नहीं हो रहे? यार ये मशहूर कैसे हो गया, इसको तो हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, अच्छा इतना खूबसूरत क्यों है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है। हाँ मेरे रब के खजाने खत्म नहीं हो गए, हसद की बजाय एक और काम करना शुरू कर दें, और वो क्या है, उसको कहते हैं रश्क। अल्लाह इसको दिया है और दे दे, मुझे भी दे दे, मेरे रब के पास तो जो रब इसको दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। हम ये क्यों कहते हैं इसका छिन कर मुझे मिल जाए या कम से कम ये बर्बाद हो जाए। यही वो हसद है जो यहूदियों की बीमारी थी, जो बदबख्तों की बीमारी थी, आज मुसलमानों के अंदर आ गई। छोड़ दें किसी की तरक्की, किसी की खुशहाली, किसी की खुशी में तकलीफ में आना छोड़ दें, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, खुद ही तकलीफ में रहेंगे। और अगर ये हो गया है ना, हो सकता है हो जाता है, इंसान है, मैंने कहा हसद प्रूफ नहीं है हम लोग, तो फिर अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, ए अल्लाह मेरे दिल को तमाम बुराइयों से पाक कर दे, तकब्बुर से पाक कर दे, ए अल्लाह गीबत से पाक कर दे, मुसलमानों के कीड़े से पाक कर दे। इंजॉय करना सीखें, खुश होना सीखें दूसरों की खुशियों में। हाँ ये दुआ कर सकते हैं, ए अल्लाह इसको दिया है मुझे भी दे दे तेरे खजानों में तो, और इसको और दे, ये भी कहा करो। बल्कि मैं मशवरा देता हूँ जिससे हसद हो गया ना, पहले चेक कर लो कि हाँ यार एक बंदा है तो सही के जब भी उसकी तरक्की सुनता हूँ, जब भी इसकी जनाब कोई बड़ी बात इसको मिल जाती है तो मुझे तकलीफ होती है, अब आप उसी के लिए दुआ करना शुरू कर दें, ए अल्लाह इसको और दे। आप कहेंगे मौलाना साहब बंदा ही अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए दुआ कहाँ से करें? तो इसका मतलब प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें मुसलमान के लिए दुआ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यही तो हसद है, ये तो टेस्टर हो गया ना कि इतना गंदा हो गया मेरा दिल कि मैं इसकी दुआ नहीं कर पा रहा, दुआ करता हूँ तो बुरा लगता है। यही चेकिंग थी, यही टेस्ट था, यही वायरस है। और ये वायरस निकलेगा ही ऐसे कि आप जिससे हसद है उसके लिए दुआ करें, थोड़े दिन लगेंगे फिर ये वायरस उतर जाएगा, फिर क्लीन हो जाएगा। और आपको कोई आकर कहेगा ना यार उसकी एक और फैक्ट्री लग गई है, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, कोई मसला नहीं, क्लीन हो जाओगे। अगर अपने आप को साफ करना है तो जिसकी तारीफ में, जिसकी तरक्की में प्रॉब्लम है उसी के लिए दुआ करें। हाँ अल्लाह से ये भी कहें मेरे मौला मुझे भी दे दे। जब आप दूसरों का भला सोचेंगे वो रब करीम आपको भी अता फरमाएगा। और जिसने दूसरों का बुरा सोचा था आखिर में क्या हुआ कि उसकी गर्दन ही उड़ा दी गई ना। अल्लाह करे कि आज के इस वाक़े से हम मैसेज भी लें, सबक भी लें, हसद को अपने दिल से निकालें। अरे दिल से गंदगी निकलेगी तो सीना मदीना बनेगा ना। हम तो इश्क रसूल की बात शुरू करके बैठे थे, अगर सीने को नबी पाक के इश्क का मदीना बनाना है तो दिल से ये सारी गंदगियों को दूर करना है। अल्लाह करीम हमारे दिलों को साफ और उजियाला फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।